హే కృష్ణ, ప్రభు రామచంద్రకే చరిత్రకో ఆగే బడాతే హే శ్రీ రామనవమికే ఋతుకే ఉపలక్ష్యమే హమ్నే ప్రభు రామ, భరత్, లక్ష్మణ్ ఔర్ శత్రుఘ్న ఇన్కే నామకరణకే విధికే బారేమే సునా. ఇన్కా ప్రాకట్య బహుత్ హీ అర్థపూర్ణ హే. హర్ తరహసే, హర్ రూపసే ప్రభు కా ప్రాకట్య జో హే वो मनुष्य जीवन के लिए बहुत अर्थ से भरा हुआ है. इस अवतार में प्रभु ने चार रूप में अवतार लिया और चारों विष्णु तत्व हैं, इसका हमने पहले भी विवरण किया है. अगर सामाजिक स्तर में हम देखें तो हम हमेशा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की बात करते हैं, जिन्हें हम चार पुरुषार्थ के रूप में जानते हैं. और भारत की हर व्यक्ति, जो भारत की जनता है, वो इस चार पुरुषार्थ के बारे में जानती है. कम से कम हर व्यक्ति ने इनके बारे में सुना तो है ही. मनुष्य जीवन इन चार पुरुषार्थों के लिए कहा गया है. पहला और आखिरी पुरुषार्थ जो है वो आत्मकल्याण के लिए है, और बीच वाले दो जो अर्थ पुरुषार्थ हैं वो विश्व में जीवन को बिताने के लिए है. लेकिन चारों का एक दूसरे के साथ कैसा संपर्क है, ये हम इन भगवान के चार विष्णु तत्व के रूप में जो अवतार हुए हैं, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, इनमें बहुत समर्पक दृष्टि से हम देख सकते हैं. धर्म जो है वो हमें सदाचार, कर्तव्य, नीति, आदर्श, मूल्य ये समझाता है कि किस लिए हमने मनुष्य जन्म लिया है. अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम. भगवान हमें मनुष्य जीवन को कैसे चलाना चाहते हैं, कि हम उसे कैसे चलाएं, इसके बारे में सारा शास्त्र धर्म में दिया है. फिर धर्म को पालन करने के लिए संपत्ति चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए और साधन चाहिए. भगवान की पूजा भी अर्थ के बिना नहीं हो सकती है. तो जीवन चलाने के लिए और भगवान को प्राप्त करने के लिए, दोनों चीज़ों के लिए साधन की आवश्यकता है. तीसरा है ऐहिक और सांसारिक इच्छा और आकांक्षा. हम सब लोग इस विश्व में अनंत आकांक्षा लेकर आते हैं. कुछ अपूर्ण आकांक्षाएं होती हैं, कुछ हमारा संस्कार होता है, और इस तरह से हमारा जीवन चलता है. और इस जीवन में हम हमारे अपूर्ण इच्छाओं को प्रयत्नपूर्वक पूर्ण करना चाहते हैं, और आखिर में जब हम बहुत सारे प्रयास करते हैं तो हमें बहुत सारी अनुभूतियाँ होती हैं, तो मन विरक्ति की ओर मुड़ता है और विरक्ति का आखिरी रूपांतर जो है मोक्ष में होता है. ये अगर हम धर्म के अनुसार चलें तो जीवन का मार्ग इस प्रकार से होता है. तो धर्म का प्रतीक प्रभु रामचंद्र है, क्योंकि प्रभु रामचंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम हैं. उन्होंने धर्म के अनुसार कैसे जीवन बिताना चाहिए, इसका एक दिव्य आदर्श, दिव्य मर्यादा उन्होंने स्थापन की है. एक आदर्श पुत्र, एक आदर्श पति, एक आदर्श पिता, एक आदर्श राजा, आदर्श भाई, आदर्श प्रजाजन, आदर्श मनुष्य, हर प्रकार के जितने भी हमारे जीवन में हम रोल अदा करते हैं, वो सभी किरदारों में आदर्शता कैसे लानी चाहिए, इसे धर्म के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार प्रभु रामचंद्र ने अपने उदाहरण में स्थापन किया. लक्ष्मण जी जो है वो अर्थ के प्रतीक हैं, जैसे हमने पहले भी बताया था. तो अर्थ शक्ति सदैव धर्म के लिए होनी चाहिए. धर्म का आचरण करने के लिए अर्थ का प्रयोग होना चाहिए. धर्म के साथ साथ वो चलनी चाहिए. अगर वो अर्थ संपत्ति, साम्राज्य, ऐश्वर्य अगर हम धर्म के लिए चलाते हैं, उसका उपयोग धर्म के लिए करते हैं, तो हमारा कल्याण होता है. और वैदिक आध्यात्मिक ज्ञान के अनुसार वो आर्थिक विनियोग भी होना चाहिए. धन का जो आदान प्रदान होता है, धन का उपयोग होता है, विनियोग होता है, वो हमेशा धर्म के आदेशानुसार होना चाहिए. और अगर ये धन संपत्ति, अर्थ संपत्ति, साम्राज्य, ऐश्वर्य अगर धर्म को छोड़कर स्वार्थ के हेतु उसका उपयोग होता है, तो वो जीव के विनाश का कारण बन जाता है. जीव में कलह उत्पन्न करता है, झगड़ा उत्पन्न करता है, विनाश उत्पन्न करता है, बुद्धि का नाश, सद्गुणों का नाश करता है. अर्थ जो है जब तक भगवान की सेवा में है, तब तक उसका उपयोग आत्मा के विकास के लिए, कल्याण के लिए हो सकता है। तो लक्ष्मण जी हमेशा राम जी के साथ रहे, उसी प्रकार से अर्थ का विनियोग हमेशा धर्म के अनुसार होना चाहिए। आगे की बात है ऐहिक लौकिक इच्छाएं आकांक्षाएं, वो शत्रुघ्न का प्रतीक है। शत्रुघ्न जो है वो काम का प्रतीक है। शत्रुघ्न के रूप में आकांक्षाएं व्यक्त होती हैं और वो हमेशा भरत जी के साथ रहे हैं और भरत जी मोक्ष का प्रतीक हैं। तो जीवन की आकांक्षाएं, जीवन की अभिलाषाएं, जिसको हम गोल कह सकते हैं, जीवन का उद्देश्य कह सकते हैं, वो हमेशा जीवन की जो परिपूर्णता है, जो मोक्ष है, उसके रास्ते में होना चाहिए। अगर हमारी आकांक्षाएं भोग की तरह होती हैं, भोग के मार्ग में होती हैं, तो वो हमें मोक्ष का रास्ता छोड़कर पुनः पुनः इस विश्व में जन्म लेने की श्रृंखला में बद्ध कर देता है। जब हमारी आकांक्षाएं मोक्ष के अनुकूल होती हैं, हम उसको जीवन की परिपूर्णता के रास्ते पर रखते हैं। हमारी इच्छाएं आकांक्षाएं हमेशा जीवन की परिपूर्णता के रास्ते में होंगी तो हमें मोक्ष प्राप्ति होती है। इसलिए भरत जी जो हैं वो मोक्ष की समर्पकता दिखाते हैं। भरत जी ने जो भी कार्य किया वो पूर्णता भगवान के निछावर था, भगवान की इच्छा के अनुकूल था। भगवान के प्रतिनिधि के रूप में उसने राज्य किया, लेकिन खुद के आनंद के लिए उसका भोग नहीं लिया। जो भी राज्य चलाया, जो भी अधिकार जताया, साम्राज्य आधिपत्य जताया अयोध्या के ऊपर, अयोध्या के बाहर झोपड़ी में रहकर बिताया, आधिपत्य पूर्ण तरह से चलाया, शासन पूर्ण तरीके से यशस्वी रीति से चलाया, लेकिन किया केवल भगवान के लिए। वही उनका मोक्ष का प्रतीक है। मोक्ष यानी भौतिक आकांक्षाओं से मुक्ति। जब भौतिक आकांक्षाएं समाप्त होती है तो स्वतः ही जीव मोक्ष को प्राप्त करता है। और मोक्ष के बाद में जीवन समाप्त नहीं होता है। मोक्ष के बाद में युक्ताहार विहारस्य युक्त कर्मसु चेतेसः, हर वस्तु को केवल भगवान की सेवा में लगाना, ये भी एक मोक्ष का दूसरा स्वरूप है। जब तक हम अपनी इच्छा में वस्तुओं को लगाते हैं, इच्छाओं को लगाते हैं, आकांक्षाओं को हमारे स्वार्थ के लिए लगाते हैं, तो वो मार्ग पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठराशयनम, इस दिशा में वो मार्ग जाता है। और जैसे ही स्वार्थ का रूपांतर परमार्थ में होता है, भगवान के लिए होता है, तो वही आकांक्षाएं हमें मोक्ष की ओर ले जाती हैं। वही आकांक्षाएं भगवान से जुड़ जाती हैं। हमारी और भगवान की आकांक्षाएं अलग अलग नहीं होती है, और भगवान से एक रूप होकर वो इच्छाएं हमें मोक्ष की ओर ले जाती हैं। इच्छाओं का होना कुछ बुरी बात नहीं है। इच्छाओं को भगवान के लिए करना, ये मोक्ष को ले जाता है। जीवन की परिपूर्णता, आनंद, समाधान, संतुष्टि सब इस प्रकार की आकांक्षाओं में है जो भगवान के लिए अनुकूल है। इस प्रकार से धर्म का स्वरूप राम है, लक्ष्मण जी अर्थ संपत्ति का स्वरूप है, शत्रुघ्न जी काम का स्वरूप है, और भरत जी मोक्ष को समर्पकता दिखाते हैं। अगर हम मूलभूत स्तर पर विचार करेंगे तो प्रभु राम स्वयं विष्णु भगवान है, अखिल ब्रह्मांड नायक गौलोकेश्वर श्री कृष्ण का ही स्वरूप है। राम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। तो साक्षात वैकुंठनाथ गोलोकेश्वर भगवान जो है वो राम के स्वरूप में अवतरित होते हैं। फिर भरत जी जो है वो सुदर्शन चक्र का प्रतीक है जो भगवान धारण करते हैं, और चक्र जो है वो प्रकाश करता है। प्रकाश से जो स्वार्थी इच्छाएं हैं, जो माया के प्रभाव में अंधकार में निकलती हैं, उसका नाश होता है, और प्रकाश में ज्ञान का साक्षात्कार होता है, सत्य का परिचय होता है, और उसमें जीव का कल्याण होता है। तो भरत जी चक्र का प्रतीक हैं। और लक्ष्मण जी हम जानते हैं सब शेष अवतार है, अनंत शेष, भगवान का आसन भी है वो, इसलिए भगवान उन पर विराजते हैं। और आखिरी शत्रुघ्न जी जो हैं वो भगवान का जो पांचजन्य शंख है उसका प्रतीक है, साक्षात शंखा अवतार है। उसके आगे हमने पिछले कथा सत्र में बताया था कि भगवान गौलोक में जब एकमेव भगवान हैं, वो प्रथम बलराम जी के रूप में लीला अवतार में विस्तारित होते हैं, और फिर बलराम जी चतुर्व्यूह में अपने आप को विस्तारित करते हैं। वह है वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। तो जो वासुदेव विष्णु तत्व हैं, अवतार हैं, वो प्रभु रामचंद्र हैं। संकर्षण विष्णु तत्व जो हैं उसका प्राकट्य लक्ष्मण जी हैं, और प्रद्युम्न विष्णु तत्व जो हैं उसका प्राकट्य भरत जी हैं, और अनिरुद्ध जो मन के सामर्थ्य दाता हैं वो विष्णु तत्व शत्रुघ्न के रूप में आए हैं। इस प्रकार से रामायणकार जितने भी आचार्य हैं, रामायण पर टीका करने वाले जितने भी संत हैं, उन्होंने भगवान के दिव्य प्राकट्य का बहुत सैद्धांतिक रूप से हमें विवरण दिया है, ताकि हम केवल भावुक न बने, हम सत्य तत्व को भी जान लें कि भगवान कौन है और कौन कौन से प्रकार के शक्ति से किस किस का प्रतीक बनकर भगवान हमारे जीवन में आते हैं, और किस किस तत्वों के मूलभूत स्थायी स्तर पर प्रकट होकर हमारे जीवन का कल्याण करते हैं। अभी हम भगवान राम के प्राकट्य के चार कारणों की चर्चा करेंगे। भगवान राम का जो प्राकट्य है वो चार कारणों से हुआ है। गीता में हम श्लोक सुनते हैं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। ये जो विनाशाय च दुष्कृताम है, इसके बारे में प्रथम घटना होती है। कोई राक्षस आकर बड़ा आतंक करता है, बहुत सारे राक्षस उसके साथ में होते हैं, और फिर पृथ्वी माता बहुत दुखी हो जाती है, कष्टी हो जाती है। फिर उसके बाद में हम देखते हैं कि वो गौ माता बनकर ब्रह्मा जी के पास जाती है, और सब देवतागण भी साथ में आकर ब्रह्मा जी से अपने कष्ट का कथन करते हैं। फिर ब्रह्मा जी सब देवताओं की और पृथ्वी की दुख भरी स्थिति को देखकर विष्णु के पास जाते हैं और विनती करते हैं। तो देवताओं को और पृथ्वी माता को, ब्रह्मदेव, इन सब की जो शिकायत थी पृथ्वी के अराजक के विषय में, राक्षसों के आतंक के विषय में, इसको सुनकर भगवान अवतार लेते हैं उन सारे असुरों का नाश करने के लिए, जो अधर्म का प्रतीक है, असत्य का प्रतीक है। तो पहला कारण है राक्षसों का नाश करने के लिए, विनाशाय च दुष्कृतान्। फिर पहला कारण, दूसरा कारण जो है परित्राणाय साधूनां। साधु लोग त्रस्त हैं, केवल देवता लोग त्रस्त नहीं हैं, संत लोग हैं, भक्त लोग हैं, वो भी राक्षसों के आतंक से परेशान रहते हैं, वो भजन नहीं करने देते हैं, वो नियम पालन नहीं करने देते हैं, यज्ञ अनुष्ठान नहीं करने देते हैं, व्रत वैकल्य पालन नहीं करने देते हैं। यानी कि भक्त का जो सांस है, भक्त का श्वास, जीवन जो है, उसी को अवरोध उत्पन्न करते हैं। तो भक्त लोगों को पुनः आनंद देने के लिए, उनको संतुष्ट करने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। यह हुआ दूसरा कारण। ये दो कारण तो शास्त्र में सब जगह पर प्रकट हैं, सब लोगों को पता है, और प्रभु रामचंद्र के अवतार के भी ये दो कारण हैं। और जो दो दूसरे कारण हैं, ये एक प्रकार से गुप्त कारण है। तो बचे हुए दो में से जो पहला है, यानी कि तीसरा कारण जो है, वो भगवान अपने भक्ति में जो विविध प्रकार के रस हैं, उन सब रसों में अपने भक्तों के साथ में आदान प्रदान करना चाहते हैं। ये बड़ी आनंददायी और सुख की बात है कि भगवान की भक्ति में हम पांच रसों का अनुभव करते हैं। जैसे पर्वत है, भूमि है, गाय है, बैल है, मोर है, भगवान के प्रिय प्राणी है जो भगवान की सेवा के लिए विशेष रूप में आते हैं, वो सब शांत रूप में माने गए हैं। वो शांत रूप, शांत रस में अपनी सेवा करते हैं, साई भाव में अपनी सेवा करते हैं। फिर कुछ भगवान के दास हैं, जैसे हनुमान जी हैं, वो भगवान के दासता में सबसे शिरोमणि हैं। फिर भगवान के सखा हैं, मित्र हैं, जैसे हम वृंदावन में भगवान के गोपाल सखा देखते हैं। फिर वात्सल्य देखते हैं हम, वात्सल्य रस, जिसमें कौसल्या, कैकेयी, सुमित्रा जी उस रस में भगवान से प्रेम करते हैं, भगवान उनसे बालक बनकर उनको माता बनने का आनंद देते हैं। कौसल्या के पति दशरथ जी को पिता बनने का आनंद देते हैं, कृष्ण भगवान नंद महाराज को पिता बनने का आनंद देते हैं। तो भगवान एक सामान्य पुत्र की तरह उनसे व्यवहार करते हैं। तो वो हो गया वात्सल्य रस। और आगे आता है श्रृंगार रस या माधुर्य रस, जिसमें हम देखते हैं कि राधा रानी कृष्ण भगवान से उस रस में विनिमय करती हैं, सीता देवी प्रभु रामचंद्र से उस रस में विनिमय करती हैं। प्रभु राम के अवतार में तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में केवल एक पत्नी व्रत में थे, इसलिए उनकी एक ही पत्नी है, लेकिन रस जरूर है उसमें, एक व्यक्ति से क्यों ना हो उन्होंने माधुर रस का अनुभव किया। तो हनुमान जैसे भक्त हैं, उनके मित्र हैं, फिर गाय बैल पर्वत जैसे उनके शांतरस के भक्त हैं, और विशेष रूप से अपनी पत्नी की मनोगत अंतर्गत जो इच्छा थी उसको पूर्ण करने के लिए भगवान ने अवतार लिया। इसका कारण यह है कि लक्ष्मीदेव हमेशा सदैव भगवान से एकांत के लिए तरसती थी, लेकिन वैकुंठ हो या और कहीं भी हो, जहां पर भी विष्णु भगवान विराजते हैं वहां हमेशा उनके इर्द गिर्द हजारों भक्त रहा करते हैं। भगवान भक्त समुदाय प्रिय है, चाहे वैकुंठ में हो, गौलोक में हो, द्वारका में हो, मथुरा में हो, और भूमि पर अवतरित धाम में हो, सब जगह भगवान भक्तों से घिरे रहते हैं। लक्ष्मी देवी एकांतवास ढूंढ रही थी। एक समय पृथ्वी पर ढूंढते ढूंढते उसने एक सामान्य पुरुष और स्त्री को, पति और पत्नी को बैठकर किसी के बिना अकेले में एकांत में आदान प्रदान संग करते हुए देखा। तो लक्ष्मी जी ने फिर विष्णु से विनती की कि हमें भी इच्छा है कि हम आपसे एकांत में संग करें, क्योंकि जब कोई नहीं होता है तब भी हम शेष आसन पे होते हैं और अनंत शेष आपका आसन शैया बनकर वहां पर रहते हैं, तो हमें एकांत प्राप्त नहीं होता है। तो भगवान ने कहा कि हम पृथ्वी पर सीता और राम के रूप में जन्म लेंगे और फिर वन में जाकर एकांत में संग करेंगे। हम देखते हैं ये निर्णय होने के बाद जब सीता ने जन्म लिया, प्रभु ने जन्म लिया, उसमें प्रभु के जीवन के 12 साल फिर वियोग में गए, मतलब अर्थात उनका मिलन नहीं हुआ। फिर 12 साल उन्होंने विवाहिक जीवन बिताया अयोध्या में, विवाह 12 साल में हुआ और 12 साल वो विवाहित अवस्था में युवराज युवराजनी के रूप में अयोध्या में रहे, लेकिन कहा गया है कि 3 पटरानियां दशरथ की और 350 अंदरानियां, ऐसे 353 सासुमाएं उनके आजू बाजू में हमेशा घुमा करती थी। इतना प्रेम था उनको अपनी प्रथम बहू पर, सीता पर, कि कभी भी सीता को अकेला छोड़ते नहीं थे, हमेशा उसके इर्द गिर्द रहा करती थी। तो तभी कभी उनको अपने पति प्रभु रामचंद्र के साथ एकांतवास नहीं मिला। फिर वनवास जब गए तब हनुमान जी ने भी आके वर्णन किया है कि प्रभु आपके चित्रकूट के 2-13 साल थे, उसी में मैंने आपको सबसे आनंदमय स्थिति में देखा है, शांत आनंद, किसी संघर्ष रहित, सीता मैया के साथ में अकेले में एकांतवाद संवाद आदान प्रदान करते हुए मैंने देखा है। ये हनुमान जी भी उसके प्रमाण है। तो ऐसे इस प्रकार का जो आदान प्रदान है भक्तों के साथ में, वो लेने के लिए भगवान ने अवतार लिया। और चौथा कारण जो है वो अति गुप्त और अति विचित्र कारण है। जब सृष्टि का निर्माण हुआ तो हम सब जानते हैं वैकुंठाधिपति विष्णु, जो महाविष्णु के द्वारा एक ब्रह्मांड में प्रकट होते हैं गर्भ उदक शाही विष्णु के रूप में, उनके नाभि से ब्रह्मा जी का जन्म होता है कमल के बीच में। कमल मतलब ब्रह्मालोक, जो कमलाकार है उसमें ब्रह्मा जी का निर्माण होता है, जन्म होता है। और सृष्टि का निर्माण करते ही भगवान विष्णु स्वयं अपने हाथ से ब्रह्मा जी को, स्वयं के हाथ से बनाई हुई स्वरचित स्वस्थापित रंगनाथ जी की मूर्ति ब्रह्मा जी को देती है। जो रंगनाथ जी आज दक्षिण भारत में विराजमान है, वही रंगनाथ जी की मूर्ति स्वयं भगवान विष्णु ने, मतलब अपनी स्वयं की मूर्ति स्वयं से हाथ के बनाई हुई ब्रह्मा जी को दी। तो ब्रह्मा जी ने उसका पूजन किया कई हजारों साल तक। फिर ब्रह्मा जी ने उस रंगनाथ जी की मूर्ति को राजा इक्ष्वाकु को दिया, जो सूर्यवंशी हैं। राजा इक्ष्वाकु ने अपने कई पीढ़ियों तक, उन्होंने अपनी पीढ़ी यानी स्वयं के हाथ से और सूर्यवंश के उनके बाद वाले सारे वंशज राजा जो थे सबने रंगनाथ जी का पूजन किया है अयोध्या में। अयोध्या में भगवान के प्रमुख विग्रह के रूप में श्री रंगनाथ जी थे, और उस तरह से एक के हाथ से दूसरे हाथ तक वंशज के रूप में आते आते दशरथ जी के हाथ में वो मूर्तियां आती है। दशरथ जी राजा बनते हैं तो उनके सेवा उनको प्राप्त होती है, रंगनाथ जी की सेवा। और फिर रंगनाथ जी की सेवा इतनी अच्छी तरह होने पर भी पूर्ण समर्पण, पूर्ण आत्मभावना, भक्ति, इससे रंगनाथ जी का हृदय अभी तक पूर्ति प्राप्त नहीं हुई थी। कहते समर्पण आराधना का आदर्श उन्हें चाहिए था। इतने सारे श्रेष्ठतम भक्त होने वाले राजाओं से पूजित होने पर भी भगवान की जो इच्छा थी सेवा करके लेने की, वो अभी तक पूर्ण नहीं हुई थी। तो भगवान ने फिर स्वयं अवतार लिया उनके ही विग्रह की पूजा करने के लिए। और इस रूप में प्रभु रामचंद्र ने, स्वयं विष्णु के अवतार हैं, उन्होंने समर्पण और आदर्श, भक्ति और समर्पण आराधना का दिव्य आदर्श स्थापन किया। कई बार हम देखते हैं जैसे भक्त का हृदय समझने के लिए श्री कृष्ण भगवान ने आखिर श्री गौरांग महाप्रभु से रूप में अवतार लिया। एक तरह से वो भक्त का हृदय का रहस्य जानना चाहते थे और एक तरह से विश्व को उनकी भक्ति कैसे आदर्श रूप में करना चाहिए इसका भी प्रमाण भगवान देना चाहते थे। तो एक अंतर्गत कारण है भक्त का हृदय जानने के लिए और एक बाह्य कारण है कि विश्व के जितनी जनता बद्ध है उन सब लोगों को श्रेष्ठ तरीके से भक्ति कैसे करनी चाहिए उसका आदर्श तो वही दिखा सकते हैं। उसी प्रकार से श्री रंगनाथ जी जो विष्णु स्वरूप हैं, स्वयं विष्णु के स्वरूप हैं, उनकी आराधना और उनका समर्पण के साथ में कैसे आदर्श रूप में उनका सेवा होना चाहिए इसका प्रमाण तो केवल भगवान ही दे सकते हैं। और ये बड़ा विचित्र और रहस्यमय कारण है जिसके कारण प्रभु ने अवतार लिया। इससे हम समझ सकते हैं कि भगवान केवल भाव के भूखे हैं। भगवान हमारे समृद्धि, ऐश्वर्य, साम्राज्य, धन संपत्ति, अर्थ संपत्ति, अर्थ साम्राज्य से प्रभावित नहीं होते, क्योंकि अर्थ संपत्ति, ऐश्वर्य, साम्राज्य वो सब उनका दिया हुआ है, उसमें हमारा कुछ नहीं है जिस पर हम गर्व कर सकते हैं। हम गर्व करते हैं लेकिन वो गर्व करने योग्य नहीं चीजें हैं। उन चीजों से, उन वस्तुओं पर हम गर्व नहीं कर सकते क्योंकि वो भगवान के द्वारा उधार ली गई है, उनकी संपत्ति है वो, जो हम अपने कर्मों के अनुसार हमें वो भोगने को मिलती है और हम उसको भोगते हैं और अपना समझते हैं, अपने आप को उनका अधिकार समझते हैं उसके ऊपर। लेकिन इन सबके परे जाकर जो इच्छा होती है हृदय की, जो हृदय का भाव होता है वो हमारा होता है। और जीव के हृदय के भाव को अनुभव करने के लिए भगवान हमेशा व्याकुल रहते हैं, इसलिए उनको भावग्राही जनार्दन कहा गया है। तो भगवान, आप उनको कितने व्यंजन भोग लगा रहे हैं उससे प्रभावित नहीं होते, भगवान आप किस भाव से लगा रहे हैं उससे प्रभावित होते हैं। इसलिए विदुरानी के घर पे गए कृष्ण भगवान तो केले के छिलका खाकर भी प्रसन्न हो गए और दुर्योधन का 56 भोग भी त्याग कर दिया उन्होंने, क्योंकि एक विदुरानी का भाव बहुत श्रेष्ठतम था और दुर्योधन ने 56 भोग बनाए थे, कपटी भाव से बनाए थे, छल षड्यंत्र के भाव से बनाए थे। इस तरह से भगवान केवल हमारे भाव से रिझते हैं और ऐसे भाव से रिझने वाले प्रभु रामचंद्र, इन्होंने चैत्र शुद्ध नवमी को अवतार लिया है हम सबके जीवन में मौका देने के लिए कि हम भी अपना भाव उनको अर्पण करें। हरे कृष्ण।